आज है 2 अप्रैल दिन रविवार, स्वीकार कीजिए संदीप सोनी का नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी का मुद्दा फिर गरमाया, मध्य प्रदेश में ईवीएम पर्ची मामले में भिंड के कलेक्टर और एसपी पर गिरी गाज।
मशीन के सॉफ्टवेयर में ये डाला गया है कि भाई कोई भी वोट डाले, कोई भी बटन दबाए, बीजेपी को वोट पड़ेगा।
सुनिए, बिहार में शराबबंदी के एक साल बाद कितनी बदली है घर परिवारों की तस्वीर।
आके मारा पीटी नहीं होता है, गाली गलौज नहीं होता है, अब सुविधा है, क्या कमा कर लाता है, दो पैसा खिलाता है।
माओवादियों से लड़ने के बदले 100-200 रुपए के इनाम से जवानों में है नाराजगी। और
भले मियां हिंदू में जबरा बंद करा दो योगी जी और पुलिस पकड़ के पीटेगी तो प्यार कहां से पनपेगा।
बनारस के महामूर्ख सम्मेलन की झलकी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिनेश उप्रेती से। मध्य प्रदेश में ईवीएम मशीन में डेमो के दौरान किसी भी बटन के दबाने पर कमल की पर्ची निकलने के मामले में भिंड के डीएम और एसपी को हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सलीना सिंह ने 2 विधानसभाओं के 9 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव में इस्तेमाल होने वाली मशीनों का डेमो रखा था। इसी दौरान अलग अलग बटन दबाने पर भाजपा के चुनाव निशान कमल की ही पर्ची निकली थी। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे की शिकायत चुनाव आयोग से की है। कोलंबिया के दक्षिण पश्चिम इलाके में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से 200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। राष्ट्रपति जुआन मैनुअल सांतोस ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा राहत कार्यक्रम के तहत राहत और बचाव के लिए सैनिकों को तैनात किया गया है। राष्ट्रपति सांतोस दक्षिणी शहर मोकावा गए हैं, जहाँ बचाव दल मलबे में बदल चुके मकानों में फंसे लोगों को खोजने में जुटा है। मुझे बताया गया है कि 112 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन हमें नहीं पता कि और कितने लोग मारे गए हैं। लापता लोगों की तलाश का काम जारी है। मेरी संवेदना उन लोगों के साथ है जिन्होंने इस आपदा में अपने परिजनों को खोया है। ये थे कोलंबिया के राष्ट्रपति जुआन मैनुअल सांतोस के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने देश की संसद से विधायी शक्तियां छीन लेने के अपने फैसले को पलट दिया है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले की समीक्षा करने की अपील की थी, ताकि संस्थाओं की स्थिरता को कायम रखा जा सके। वेनेजुएला के विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तख्तापलट बताया था और लोगों से सड़क पर उतरकर इस फैसले का विरोध करने की अपील की थी। दक्षिण अफ्रीका के नए वित्त मंत्री मालुसी गिगाबा ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत है। राष्ट्रपति जैकब जुमा ने प्रवीण गोर्धन को हटाकर गिगाबा को नया वित्त मंत्री नियुक्त किया है। अपने अधिकांश लोगों को पीछे छोड़कर आर्थिक तरक्की नहीं हो सकती। लंबे समय तक सरकारी तिजोरियां बड़े कारोबारियों, ताकतवर लोगों और विदेशी निवेशकों के लिए ही खुली थी। सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि ये लोगों की सरकार है। ये थे दक्षिण अफ्रीका के वित्त मंत्री मालुसी गिगाबा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दक्षिण कोरिया का एक कार्गो जहाज उरुग्वे के नज़दीक दक्षिण अटलांटिक में लापता हो गया है। इसमें 24 लोग भी सवार थे। समाचार एजेंसियों ने राजधानी सोल में अधिकारियों के हवाले से बताया कि जीवन रक्षक नौका पर पाए गए 2 नाविकों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। शुक्रवार को जहाज से चालक दल के एक सदस्य ने संदेश भेजा था कि जहाज में पानी भर रहा है। इस जहाज की क्षमता 2,60,000 टन है। उत्तरी फ्रांस में एक कार्निवाल के दौरान बोन फायर में धमाका होने से कम 18 लोग घायल हो गए। सोशल मीडिया पर डाले गए धमाके के वीडियो में दिख रहा है कि बोन फायर में आग लगने के कुछ सेकंड के भीतर तेज धमाका हुआ। अभियोजकों ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक विस्फोट के कारणों का पता नहीं चला है। अमरीकी गीतकार और गायक बॉब डिलन ने आखिरकार साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीकार कर लिया है। स्वीडिश मीडिया की खबरों में कहा गया है कि अपने निर्धारित कंसर्ट से पहले एक निजी समारोह में डिलन ने पुरस्कार ग्रहण किया। 75 साल के डिलन को पिछले साल नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। बीबीसी समाचार।
बीबी बीबीसी हिंदी रेडियो से दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत, सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और अपने मोबाइल फोन पर भी नमस्कार भारत का सीधा प्रसारण। भारत में लगभग 18 साल पहले यानी वर्ष 1999 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। इन 18 वर्षों में ये सवाल कई बार उठा कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में किसी तरह की छेड़छाड़ की जा सकती है। इसी साल मार्च में उत्तर प्रदेश और पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अरविंद केजरीवाल और मायावती ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, लेकिन चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण के बाद ये मामला ठंडा होता नजर आ रहा था कि कल ये मुद्दा फिर गर्मा गया। संदेह की आग लगी इस बार मध्य प्रदेश में, जिसका धुआं दिल्ली में भी उठा। भोपाल से शूर नियाजी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के आटेर और बांधवगढ़ में होने वाले उपचुनाव से पहले भोपाल में एक बार फिर ईवीएम के मामले ने जोर पकड़ लिया है। मामले की शुरुआत भिंड जिले के आटेर से हुई, जब चुनाव के लिए हुई समीक्षा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सलीना सिंह ने डमी ईवीएम और वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल का डेमो पत्रकारों के सामने किया। इसका वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तो वैसे ही विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग और सरकार को निशाने पर लिया। विपक्षी कांग्रेस ने मांग की है कि प्रदेश में आटेर और बांधवगढ़ में होने वाले उपचुनाव में ईवीएम की जगह मतपत्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आटेर में ईवीएम से जुड़ी वीवीपैट सिस्टम से भाजपा की पर्ची निकली, जबकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी सलीना सिंह ने समाजवादी प्रत्याशी वाले बटन को दबाया था। इस तरह से उन्होंने कई बार बटन दबाया और हर बार भाजपा की ही पर्ची निकली। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा,
मध्य प्रदेश कॉर्डर की आईएएस आदरणीय सलीना सिंह के रहते हुए अब मध्य प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव की संभावना लगभग क्षीण हो चुकी है, लिहाजा भारत सरकार का निर्वाचन आयोग किसी गैर भाजपाई और उसमें मैं गैर कांग्रेसी शासित भी उल्लेख कर रहा हूं कि गैर भाजपाई और गैर कांग्रेसी शासित राज्य के किसी कर्तव्यनिष्ठ आईएएस को निर्वाचन की जिम्मेदारी सौंपे।
मामले को तूल पकड़ता देख मुख्य निर्वाचन अधिकारी सलीना सिंह पत्रकारों से रूबरू हुई। चुनाव आयोग ने इस मसले पर सलीना सिंह से रिपोर्ट भी मांगी। सलीना सिंह ने इस मसले पर किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया।
कलेक्टर भिंड ने एक डेमो किया और उस डेमो के दौरान जो वीवीपैट में प्रथम बार दबाने पर लोटस का सिंबल आया, परंतु द्वितीय बार दबाने पर उस पर हाथ पंजे का सिंबल आया। तो हमारा सोचना यह है कि ये सिद्ध करता है कि आप जब अलग अलग बटन दबाते हैं तो अलग अलग चिन्ह आते हैं, और इसी से हम प्रचार प्रसार भी यही करना चाह रहे थे कि जो वीवीपैट है हर वोटर जब वोट डालेगा तो पर्ची दिखेगी जो 7 सेकंड के लिए दिखेगी, और उसमें वो जान सकता है कि उसने किसे वोट डाला और किसे नहीं डाला। इसे बाद में किस तरह का रूप दिया गया, रुख दिया गया, किसी आई थिंक सम किसी एलिमेंट से इसे अलग नजरिए में दिखाने का प्रयास किया।
लेकिन कांग्रेस की शिकायत के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग भी हरकत में आया। चुनाव आयोग ने पूरी जांच के लिए एक टीम आटेर भेजने का फैसला किया है। यह टीम आज आएगी और वह ईवीएम और वीवीपैट के अलावा 21 अधिकारियों की भी जांच करेगी जिनकी शिकायत कांग्रेस ने की है। आम आदमी पार्टी ने भी इस मामले के खिलाफ एक प्रदर्शन मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सामने किया और मांग की है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को फौरन बर्खास्त किया जाए। शुरहनियाजी, बीबीसी न्यूज भोपाल।
जैसा कि मैंने इस रिपोर्ट से पहले कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी का मामला मध्य प्रदेश में सामने आया, और इधर दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव आयोग जा पहुंचे और जिस वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट से हर बार कमल की पर्ची निकलने की बात हो रही है वो है क्या, आइए सुनते हैं हरिता कांडपाल की इस रिपोर्ट में।
मुझे शुरू से ईवीएम मशीन पर भरोसा नहीं है, शुरू से बटन दबाओ पता नहीं पड़ता वोट कहाँ गया। इसलिए बुनियादी तौर पर विकसित देश भी बैलेट पेपर पर चुनाव करा रहे हैं तो फिर हमें क्या ऐतराज होना चाहिए।
ये थे कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ शिकायत लेकर दिल्ली में चुनाव आयोग पहुंचे थे। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव आयोग में शिकायत की है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अगले महीने होने वाले एमसीडी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की है। ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मसले पर ये कहा,
तो जो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारी मशीन टेम्पर नहीं हो सकती, हमारी चिप जो है उसको पढ़ा नहीं जा सकता, उस पर लिखा नहीं जा सकता, ये सरासर गलत है। उस मशीन का सॉफ्टवेयर बदला गया है, मशीन के सॉफ्टवेयर में ये डाला गया है कि भाई कोई भी वोट डाले, कोई भी बटन दबाए, बीजेपी को वोट पड़ेगा।
हालांकि भाजपा ने इस प्रकरण पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन ये वीवीपैट है क्या, जिसे लेकर दिल्ली में राजनीति गर्मा गई है। वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज की एक पर्ची बनती है। इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया गया है उनका नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है। ये व्यवस्था इसलिए है कि किसी तरह का विवाद होने पर ईवीएम में पड़े वोट के साथ पर्ची का मिलान किया जा सके। ईवीएम में लगे शीशे के एक स्क्रीन पर यह पर्ची 7 सेकंड तक दिखती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ये मशीन 2013 में डिजाइन की थी। सबसे पहले इसका इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में हुआ था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट मशीन बनाने और इसके लिए पैसा मुहैया कराने के आदेश केंद्र सरकार को दिए थे। चुनाव आयोग ने जून 2014 में तय किया था कि अगले चुनाव यानी कि साल 2019 के चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा और आयोग ने इसके लिए केंद्र सरकार से 3,174 करोड़ रूपए की मांग भी की थी।
रिपोर्ट सुना रही थी हरिता कांडपाल। दिल्ली से छपने वाले अखबारों में आज के अखबारों में ये खबर किन शब्दों में छपी है, इसके अलावा क्या कुछ छपा है, हम आपको बताएंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन उससे पहले, क्या आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में माओवादियों से मुठभेड़ के बदले सुरक्षाकर्मियों को इनाम में कितनी रकम मिलती है? आइए जानते हैं रायपुर से आलोक पुतुल की इस रिपोर्ट में।
देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माने जाने वाले माओवादियों से मुकाबला करने वाले जवानों के हौसले पस्त हैं। इन माओवादियों से मुठभेड़ करने और उन्हें मारने वाले जवानों को जो इनाम की राशि दी जाती है उसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले 2 सालों में कुल 1,362 जवानों को माओवादी मुठभेड़ में वीरता के लिए इनाम दिया गया है, लेकिन अगर आंकड़ों को देखें तो 75% जवानों को इनाम में 100 रुपये से भी कम की रकम दी गई है। 91 जवानों को तो महज 40 रुपये का इनाम दिया गया है। इनाम की सबसे बड़ी रकम 4,000 रुपए है, जो पिछले 2 सालों में केवल एक जवान को दी गई है। पुलिस सुधार को लेकर चर्चित उत्तर प्रदेश व असम में पुलिस प्रमुख और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक रहे प्रकाश सिंह का कहना है कि इस तरह के इनाम को जवान की सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाता है, इसका लाभ उन्हें सेवा काल में भी मिलता है, लेकिन वे इतनी कम रकम दिए जाने को हास्यास्पद मानते हैं।
40 रुपए और 100 रुपए दे तो अच्छी तरह से दे, या तो मत दे, कोई भी थोड़े देना है। चौराहे पे गाड़ी खड़ी है, कोई हाथ बढ़ाया, आपने 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया डाल दिया, दीजिए तो ठीक से दीजिए।
छत्तीसगढ़ में मानवाधिकार संगठन PUCL के अध्यक्ष डॉक्टर लाखन सिंह का कहना है कि जब जवानों को दिए जाने वाले हथियारों पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं तो इनाम में ऐसी रकम क्यों?
जिन सैनिकों के हाथ में आधुनिकतम हथियार दिए जाते हैं उस पे यही सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। पुलिस विभाग हो या सरकार हो, वो अपने ही सैनिकों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनहीन, लापरवाह है। वो एक ह्यूमन है, उनकी अधिकार रक्षा की जानी चाहिए, उन्हें वो सारे साधन मिलने चाहिए जो इन हथियारों से लाकर वे अपने जीवन कुर्बान करते हैं।
लेकिन छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री रामसेवक पैंकरा जवानों को दी जाने वाली इनाम की राशि को पर्याप्त मानते हैं।
देखिए, नक्सली क्षेत्र में जो भी हमारे जवान काम कर रहे हैं, हमने नहीं, अभी तो कोई विचार ऐसी है ही नहीं है। हम लोगों ने नाम घोषित किया गया है और उसमें काफ़ी सफलता मिला भी है, और नहीं अभी तो कोई बढ़ाने की योजना नहीं, नाम मिल रहा है पर्याप्त है।
लेकिन छत्तीसगढ़ में पुलिस सुधार के लिए पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे राकेश यादव गृहमंत्री की राय से सहमत नहीं है।
जवानों के साथ इस तरह का व्यवहार उनके मनोबल को तोड़ता है, उन्हें कमजोर करता है। मेरे पास जवान साथियों का फोन आता है, उनकी शिकायतें आती हैं। इनाम की राशि कम से कम 5,000 रुपए से 5 लाख तक होना चाहिए और उनके बेहतर कार्य अंजाम के लिए उन्हें प्रमोशन भी मिलना चाहिए, और प्रमोशन वो भी तत्काल मिलना चाहिए बिना किसी लंबी औपचारिकता के।
फिलहाल तो सरकार माओवादियों से लड़ने के नाम पर हथियारों में भी इजाफा कर रही है और जवानों की संख्या में भी, लेकिन माओवादियों से लड़ने वाले इन जवानों को मिलने वाले इनाम की राशि में किसी बढ़ोतरी की कोई योजना सरकार के पास नहीं है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
आजादी के बाद हुआ है दर्ज ये पहला केस, बाप को धक्का देकर आगे आए हैं अखिलेश जगीरा।
लंगड़ी कविता पढ़ते हैं जो छंद करा दो योगी जी, भले मियां हिंदू में जबरा द्वंद करा दो योगी जी, और पुलिस पकड़ के पीटेगी तो प्यार कहां से पनपेगा।
पुलिस पकड़कर पीटेगी तो प्यार कहां से पनपेगा। वाराणसी में आयोजित महामूर्ख सम्मेलन पर एक रिपोर्ट सुनेंगे हम। उससे पहले एक नज़र दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियों पर। दिनेश उप्रेती कई अखबारों के साथ स्टूडियो में मेरे ठीक सामने बैठे हैं।
जी संदीप, जैसे कि ये मध्य प्रदेश का ईवीएम पर्ची मामला है वो लगभग सभी अखबारों में छाया हुआ है और हमारे बीबीसी हिंदी की वेबसाइट पे भी, और अभी हमने सुरैनिया जी की रिपोर्ट भी सुनाई उसमें भी इसका जिक्र था। साथ ही हरिता कांडपाल ने ये भी बताया था कि वीवीपैट दरअसल होता क्या है, तो ये खबर तो सुर्खियों में है ही। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है, उसके अनुसार कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों में जुर्माना बढ़ाकर जो है वो 5 गुना बढ़ा दिया गया है और 10,000 रुपये से कर दिया गया है। साथ ही एक कंडीशन और लगा दी गई है कि यदि शराब पीकर गाड़ी चलाने के दौरान दुर्घटना में किसी की जान चली जाती है तो इसे गैर जमानती अपराध बना दिया गया है और 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। दूसरी इंडियन एक्सप्रेस में एक और खबर है, और शायद जो सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रशासनिक कमेटी बनाई है विनोद राय की अध्यक्षता में, उसने ये तय किया है कि अब क्रिकेटरों को, विराट कोहली एंड कंपनी को, वही चेक नहीं मिलेगा, अब उनको जो है पेमेंट ऑनलाइन ही होगा।
डिजिटल इंडिया,
डिजिटल इंडिया। ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है बल्कि घरेलू क्रिकेट में जितने भी पुरुष और महिला खिलाड़ी हैं जिनको बीसीसीआई पेमेंट करता है उन सबको वो अब ऑनलाइन पेमेंट ही करेगा।
जी,
हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर है जिसमें आज नरेंद्र मोदी जम्मू एंड श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सब देश की सबसे बड़ी जो सड़क मार्ग की सुरंग है उसका उद्घाटन करेंगे। उधमपुर जिले के चेनानी में ये सुरंग बन रही है और इससे जम्मू और श्रीनगर के बीच का जो सफ़र का फासला है उसको 2 घंटे कम हो जाएंगे उसमें। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के 3 जिलों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। ये इस फैसले को इस तरह से देखना होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1 अप्रैल के बाद हाईवे और नेशनल हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्ग के 500 मीटर के दायरे में कोई भी शराब नहीं बिकेगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने यह फैसला दिया। हाईकोर्ट ने रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में शराब बिक्री पर प्रतिबंध का आदेश दिया था। ध्यान रखने वाली बात है कि ये वही जिले हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री जाने वाले जो लाखों के चार धाम यात्री
आते हैं। बहुत शुक्रिया समाचार पत्रों की सुर्खियां बताने के बाद, जानने के बाद। अब हम रुख कर रहे हैं बिहार का, जहां शराबबंदी का 1 साल पूरा हो गया है। इस 1 साल में बिहार की तस्वीर कितनी बदली है, बता रहे हैं पटना से मनीष शांडिल्य।
सूबे में 1 अप्रैल 2016 को शराबबंदी के पहले चरण की शुरुआत हुई थी और इसके 5वें दिन ही अचानक पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी गई। महिला संगठनों सहित आम लोगों का कहना है और सरकार का भी यह दावा है कि इस फैसले के बाद महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा कम हुई है।
दारू पीता था, पिया खोता था, करो मार दिया, करो पीट दिया, घर में बुझाना, अब शांति, घरों भी बाहरों भी।
आके मारा पीटी नहीं होता है, गाली गलौज नहीं होता है, अब सुविधा है, कोई या कमा कर लाता है, 2 पैसा खिलाता है पिलाता है।
लेकिन सरकार के दूसरे आंकड़े कुछ अलग कहानी भी पेश करते हैं। बीते 1 साल में शराबबंदी कानून के तहत 43,000 से अधिक लोग जेल भेजे गए। माना जाता है कि शराबबंदी या नशा मुक्ति प्रशासनिक से ज्यादा एक सामाजिक मुद्दा है। ऐसे में ये गिरफ्तारियां क्या इस ओर भी इशारा करती हैं कि समाज को पूरी तरह जागरूक किए बगैर ही शराब पर रोक लगा दी गई। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की राष्ट्रीय महासचिव मीनू तिवारी इसे नाकाफी बताती हैं।
बिहार के भीतर अगर आप जागरण की बात कर रहे हैं तो शराब तो बहुत सारे वजहों से बढ़ता है ना। आप नौजवानों के लिए यहाँ कोई भी, उनके सामने एक तो रोजगार बड़ा प्रश्न है ही, उनके सामने कोई एक समृद्ध किस्म की कोई सांस्कृतिक व्यवस्था हो, सांस्कृतिक केंद्र बनाए आप बिहार के भीतर, आप खेल कूद की तरफ नौजवानों को आगे बढ़ाएं, वो विचार के सिलसिले में आगे बढ़ सके, ऐसा आप युवा केंद्र बनाएं, तो ये जो जागरूकता का काम हो सकता था सरकार ने इसको नहीं किया है।
शराबबंदी से जुड़ा एक दूसरा पहलू यह है कि इससे सरकार को 700 करोड़ के राजस्व का नुकसान भी हुआ है। अर्थशास्त्री और एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के पूर्व निदेशक डॉक्टर डीएम दिवाकर इस संबंध में 2 बिल्कुल अलग पहलू सामने रखते हैं।
जो भी थोड़ा नुकसान हुआ है 5,000 करोड़ के या 8,000 करोड़ की बात हो रही है, लेकिन एक नहीं कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर में सरकार पैसे खर्च नहीं कर पाई है। इसलिए बिहार जैसे राज्य में तो राजस्व का हान मसला नहीं है, मुख्य मसला है कि राजस्व जो हमारे पास है, जो संसाधन हम जुटा पाते हैं, इसको प्रभावी ढंग से गुणात्मक रूप से खर्च कर सके।
वहीं शराबबंदी के एक साल के सामाजिक आर्थिक असर पर सत्तारूढ़ जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है,
घरेलू हिंसा और साथ ही साथ अपराध के मामले में भी जो बढ़ोतरी हुई है उसमें महत्वपूर्ण कारक शराबबंदी, शराबबंदी से राजस्व की क्षति हुई, लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि अगर 5 से 4 करोड़ का नुकसान हुआ है राज्य सरकार के खजाने में, क्योंकि राज्य सरकार का अनुमान है 10,000 करोड़ लोगों के पॉकेट में गया है।
इस साल जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शराबबंदी के फैसले के लिए सार्वजनिक रूप से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की थी। मनीष शांडिल, BBC, पटना।
बड़े अरमानों से रखा है कलम तेरी कसम, ओ कलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम।
जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदा तुमको आना पड़ेगा।
ये जो तमाम गीत अभी आप सुन रहे थे उनकी धुन तैयार की थी उस शख्स ने जो संगीत की दुनिया में अपना नाम हमेशा के लिए रोशन कर गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संगीतकार रोशन लाल नागरथ की, जिन पर आधारित है हमारा आज का कार्यक्रम संग संग गुनगुनाओगे, संगीत समीक्षक यतीन्द्र मिश्र के साथ। सुनना ना भूलें आज शाम 7:30 बजे दिन भर में। और अब महामूर्ख सम्मेलन के लिए आइए चलते हैं बनारस।
भले ही गधा इन दिनों खास जानवर हो गया हो, लेकिन वाराणसी में पिछले 48 वर्षों से गंगा घाट किनारे शंखनाद की तरह जब तक गधा नहीं चिल्लाता तब तक महामूर्ख सम्मेलन की शुरुआत नहीं होती। 1 अप्रैल को देर रात तक होने वाले महामूर्ख सम्मेलन का आयोजन वाराणसी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पर हुआ, जहां शुरुआत से ही कवियों के निशाने पर योगी माया EVM और काशी क्योटो आ गया। कवि झगड़ू की कविता,
वाह 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 वाह, काले ये झगड़ू समर के बोला होवा मत अड़भंगी, पहले नौ मन गुदड़ी कासा ले आईबा त बनबा संगी, चरखा लगान पैबा केतनो बंकर, चरखा लगान के पैबा केतनो करबा जाय बजरंगी, जोगी का सरकार हो अब यूपी में बजी सरंगी, हाथ जोड़ के कहली माली कब माया पर कुछ बोले।
फिर क्या था, जोगिया सारा रारा के जरिए फैजाबाद से आए अंजनी कुमार शेष ने अखिलेश मुलायम और शिवपाल के पारिवारिक कलह पर जमकर कटाक्ष किया।
आजादी के बाद हुआ है दर्ज ये पहला केस, बाप को धक्का देकर आगे आए हैं अखिलेश जगीरा सारा।
बनारस के विजेंद्र मिश्र दमदार ने तो एंटी रोमियो को बंद करने की अपील तक कर दी।
लंगड़ी कविता पढ़ते हैं जो छंद करा दो योगी जी, भले मियां हिंदू में जबरा द्वंद करा दो योगी जी, और पुलिस पकड़ के पीटेगी तो प्यार कहां से पनपेगा, पुलिस पुलिस पकड़ के पीटेगी तो प्यार कहां से पनपेगा, एंटी रोमियो स्क्वाड बंद करा दो योगी जी।
बिहार से पधारे अनिल चौबे ने तो भरे मंच से PM मोदी को अमरीकी वीजा का समाधान तक बता डाला।
कि पूछा पत्रकार ने कि आपका विवरण कैसे मोदी वाली वीजा की समस्या सुलझाएंगे, कि पूछा पत्रकार ने कि आपका विवरण कैसे मोदी वाली वीजा की समस्या सुलझाएंगे, तो मैंने कहा वीजा वीजा रटते रहेंगे, किंतु ना खुश ओबामा है तो वीजा नहीं पाएंगे, कि भारत का लोहा पूरा विश्व मान लेगा यदि मेरी जो सलाह मोदी अमल में लाएंगे, कि मोनिका लेविंस्की से कीजिए विवाह आप, वीजा क्या अमेरिका के जीजा बन जाएंगे।
वाराणसी में 49वें महामूर्ख सम्मेलन में कविता के तर्कस से निकलने वाले कटाक्ष बाण के अलावा एक और व्यंग की तीर चली, जिसमें सांकेतिक रूप से एक अधेड़ समलैंगिक की शादी हुई ताकि बढ़ती आबादी के चलते पनपी समस्या की जड़ ही खत्म हो जाए, तो दूसरी शादी में हर बार की तरह पति को पत्नी और पत्नी को पति बनने का मौका मिला। BBC हिंदी के लिए वाराणसी से रोशन जायसवाल।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। दिल्ली में खेले जा रहे इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। आज महिला एकल वर्ग का फाइनल शीर्ष वरीयता हासिल स्पेन की कैरोलिना मारिन और तीसरी वरीयता हासिल भारत की पीवी सिंधु के बीच खेला जाएगा। इससे पहले कल खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की पीवी सिंधु ने स्थानीय दर्शकों को निराश तो नहीं किया, लेकिन उन्हें जीत के लिए दूसरी वरीयता हासिल कोरिया की सुंग जी ह्यून के खिलाफ 1 घंटे 16 मिनट तक कड़ा संघर्ष करना पड़ा। आखिरकार वो 21-18, 14-21, 21-14 से जीतकर फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। दूसरी तरफ दूसरे सेमीफाइनल में स्पेन की कैरोलिना मारिन ने आसानी से 40 मिनट में ही चौथी वरीयता हासिल जापान की अकाने यागामुची को 21-16, 21-14 से हराया। इससे पहले पीवी सिंधु और कैरोलिना मारिन रियो ओलंपिक के फाइनल में भी आमने सामने हो चुकी हैं, जहां बाजी कैरोलिना मारिन के हाथ लगी थी। पुरुष एकल वर्ग का फाइनल आज तीसरी वरीयता हासिल डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन और सातवीं वरीयता हासिल चीन ताइपे के चोउ तिएन चिन के बीच खेला जाएगा। कल खेले गए सेमीफाइनल में एक्सेलसेन ने हांगकांग के लोंग एंगस को केवल 29 मिनट में ही 21-12, 21-13 से हरा कर बाहर का रास्ता दिखाया। दूसरे सेमीफाइनल में तिएन चिन ने डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन को 21-17, 21-14 से हराया। उधर श्रीलंका ने कल कोलंबो में खेले गए तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बांग्लादेश को 70 रन से करारी मात दी। जीत के लिए 281 रनों का पीछा करते हुए पूरी बांग्लादेशी टीम 44.3 ओवर में केवल 210 रन पर सिमट गई। हालांकि बांग्लादेश के शाकिब अल हसन ने 54, मेहदी हसन मिराज ने 51 और सौम्य सरकार ने 38 रन बनाए। इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी की दावत पाकर श्रीलंका ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 280 रन बनाए। श्रीलंका के कुशल मेंडिस ने 54 और थिसारा परेरा ने 52 रन बनाए। वहीं टेनिस के कोर्ट पर भारत की सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार चेक गणराज्य की बारबोरा स्ट्राइकोवा मियामी ओपन के महिला युगल वर्ग के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सानिया बाराबोरा ने स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस और ताइवान की चान युंग जन की जोड़ी को मात दी।
बीबीसी हिंदी के पहले पन्ने पर अभी अभी पाकिस्तान के उर्दू अखबारों की समीक्षा प्रकाशित हुई है, जिसमें लिखा गया है कि जब से योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है, तब से लगता है कि पाकिस्तान के उर्दू अखबारों को भारत के खिलाफ जज्बात उभारने के लिए एक नई दलील मिल गई है और वो भारत में होने वाले हर वाक्य को योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व से जोड़कर देख रहे हैं। और इसकी सुर्खी है, मुसलमानों को गोश्तखोरी से कोई नहीं रोक सकता। साजिद इकबाल का ये पीस, ये आलेख आप bbchindi.com पर इस वक्त आकर पढ़ सकते हैं, जहां पर टॉप स्टोरी, शीर्ष खबर जो कहती है वो ये है कि कोलंबिया में भारी बारिश हुई है, नदियां उफान पर, पानी मलबे के साथ घरों में घुस गया, 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और इससे अधिक लोग लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। भारत में कुछ ही देर में बजने वाले हैं सुबह के 7, वक्त होगा कार्यक्रम के समापन का, लेकिन पहले सुनेंगे मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। मध्य प्रदेश में ईवीएम मशीन में डेमो के दौरान किसी भी बटन के दबाने पर कमल की पर्ची निकलने के मामले में भिंड के डीएम और एसपी को हटा दिया गया है। कोलंबिया के दक्षिण पश्चिम इलाके में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से 200 से अधिक लोग मारे गए हैं। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने देश की संसद से विधायी शक्तियां छीन लेने के अपने फैसले को पलट दिया है। दक्षिण अफ्रीका के नए वित्त मंत्री मालुसी गिगाबा ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत है। दक्षिण कोरिया का एक कार्गो जहाज उरुग्वे के नज़दीक दक्षिण अटलांटिक में लापता हो गया है, इसमें 24 लोग सवार थे। उत्तरी फ्रांस में एक कार्निवाल के दौरान बोन फायर में धमाका होने से कम 18 लोग घायल हो गए, अभी विस्फोट के कारणों का पता नहीं चला है। अमेरिकी गीतकार और गायक बॉब डिलन ने आखिरकार साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीकार कर लिया है। हरियाणा सरकार किसी भी परिवार में तीसरी लड़की के जन्म पर 21,000 रुपये का अनुदान देगी। यह अनुदान 24 अगस्त 2015 के बाद जन्मी बच्चियों के लिए दिया जाएगा। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे दिनेश उप्रेती और कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी। हमारा अगला प्रसारण दिन भर शाम 7:30 बजे। तब तक पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com है आपके साथ। संदीप सोनी को समस्त सहयोगियों के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।